लेकिन चूरमार हो जाएगा, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अभी दिल्ली से आ रहा था, अभी विवाह करके वो लौट रहे थे बर। वो बर के बड़े भाई पिताजी और उनकी नई विवाहित पत्नी और पत्नी की छोटी बहन, ये सब गाड़ी में आ रहे थे और टैंकर से वो लड़ गई। एक भी आदमी नहीं बचा, सारा परिवार खत्म। साथ ही साथ में जब इसकी खबर उसकी बहन ने मथुरा में ही या कहाँ सुनी, गौहाट में, तो वो भी अपने लड़कियों को बीस दे करके, अपने लड़के को बीस दे करके अपने बीस खा करके मर गया। वही कमाने वाला खाने वाला था, उसकी शादी हुई, नई दुल्हन लेकर के आ रहा है, सब क्या हुआ एक मिनट में। कौरवों पांडवों के युद्ध में कितना, 21-22 लाख एक तरफ के, एक दूसरी तरफ के 22-23। 17 दिन में ही 18 दिन में युद्ध करके खत्म हो गया। राम रावण के युद्ध में मेघनाथ, कुंभकर्ण इत्यादि बड़े बड़े धुरंधर, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती खत्म हो गए। भूकंप होते हैं, आइए आगे चले आइए, भूकंप होते हैं उसमें कहीं अमेरिका, कहीं जापान, कहीं कहां कहां, एक साथ में लाखों आदमी दब करके खत्म हो जाते हैं, कोई पता नहीं। ये आज की ही परिस्थिति नहीं है, ये सतयुग से चलती आ रही है। ये जेल खाना है, इसमें कोई ये समझे कि मैं सुख भोगूंगी या सुख भोगूंगा, तो जेल खाने में आदमी सुख जैसा खोजते हैं वो मूर्ख लोग हैं। अभी बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री लालू जी जेल खाना समझते थे कि हमको जेल जाना होगा, तो पहले से ही किसी गेस्ट रूम को जेल में बदल करके अपने अच्छे अच्छे पुलिस के बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया कि हमको तो जाना ही है, किंतु कब तक चलेगी। 2 दिन के बाद में यदि गवर्नमेंट बदल गई तो फिर उनका निकल जाएगा कचूमर। इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि ये जगत को हम सर्व बना लें। अपने अपने कर्मों से ये कोई ठीक नहीं है कि बच्चा ही मर जाएगा कि बूढ़ा मर जाएगा या बूढ़ा जीवित रह जाएगा 100 वर्ष का और उसके नाती साथी मर जाते हैं, कोई गारंटी नहीं। अपने कर्मों से जब भी जिसका कर्म खत्म होगा वही मर जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों का विचार है कि बचपन से ही हरि भजन करो, पता नहीं लगने देगा कि कब क्या हो गया, सोचने का विचार भी नहीं रहेगा। रावण ने सोचा था आज यदि जीवित रहा कल स्वर्ग की सीढ़ी बना दूंगा, कोई भी व्यक्ति चढ़ जाएगा सवेरे, और सवेरा फिर सवेरा नहीं हुआ, युद्ध में मारा गया वो धरा का धरा। कभी आप लोग छोटे से बच्चे और शिशु और बच्चियां थीं, आज इतनी औसत तक आई हैं, कुछ दिनों के बाद में पाल पकेंगे के दांत टूटेंगे, ये सुंदर चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, कोई नहीं पूछेगा, बेटे और बहू भी नहीं पूछेंगी, पीठ पर झाड़ू लगाएंगी। इसको याद रखें, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करो यदि कल्याण चाहते। भगवान का भजन करने में क्या कष्ट है, अरे सवेरे उठ करके हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम आध्या, इसमें क्या बिगड़ता है, पैसा भी नहीं कुछ लगता, अरे इतना नहीं आता तो इतना तो कहो राधे राधे कृष्ण कृष्ण, या जो भगवान का नाम आपको अच्छा लगता है, नारायण नाम है, हरि नाम है, कोई भी नाम हो, ये बचपन से करो। मांस मछली प्याज लहसुन भात, जिसको मांस मछली खाना है वो उसको दूसरे जन्म में वो खाती हैं, मछलियाँ और मांस इसका खाया। ये सबको बात दे करके शराब और धूम्रपान ये कैंसर इत्यादि रोग का घर है, इसको भी दूर कर करके सुख शांति से इस जीवन को बिताओ और अगला जन्म भी तुम्हारा सुधर जाएगा, इसलिए भगवान कहा। प्रहलाद महाराज जी ने कहा बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का स्मरण करो। पहले ऐसे संस्कार दिए जाते थे, आजकल संस्कार सब उठ गया, धीरे धीरे और खत्म हो रहा है, इसलिए मरने के पहले ही कुछ भगवान का नाम करो, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा दो जैसे यहाँ चढ़ाया गया। अब देखेंगे 20-25 वर्षों के बाद में हम लोग भी नहीं रहेंगे, साधु संत भी नहीं रहेंगे, गिरिराज जी भी लुप्त हो जाएंगे, गंगा जमुना भी हो सकता है कि सूख जाए, गिरिराज जी भी नहीं रहेंगे, तुलसी के पौधे अब नहीं अधिक रहेंगे जैसे पहले होते थे। धीरे 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 महान कलयुग आए, उसके पहले ही चेक करके भगवान का भजन करो। ये कांच का घर है भाई, जरा सुनिए, बोलिए तो कांच का घर। एक उपाख्यान है, उसके द्वारा ये बतलाया गया ये मनुष्य है क्या। आत्मा और शरीर एक है या अलग अलग? यदि यही आत्मा है, मैं हूँ, तो मृत्यु के बाद में आत्मा चली जाने से शरीर तो रहता है। जैसे किसी को कोई रोग हो गया, हाई प्रेशर हो गया, और बैठा हुआ ऐसे ही सोते हुए बस हो गया सदा के, शरीर के अंग प्रत्यंग सब ठीक है, उसमें से क्या निकल गया जैसे आदमी मर गया, और दूसरे दिन यदि उसका संस्कार न करो तो वो सड़कल करके ऐसा दुर्गंध हो जाएगा जिसका ठीक नहीं। तो यदि हम शरीर ही हैं तो आदमी जलाते हैं उसको, तो उस पर केस क्यों नहीं होता, मर्डर का क्यों नहीं होता? इसलिए हम शरीर नहीं हैं। यदि मरने के बाद में कोई उसको न जलाए, घर में रख दे 10 दिन के लिए, तो उस पर केस होगा और उसको सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए विचार करना है ये कि हम हैं क्या, यह शरीर है कि इसके अंदर में कुछ है। आदमी का यदि आत्मा चली जाती है तो बात नहीं कितना ही कर सकता, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, इसलिए सुख दुख की अनुभूति करने वाला और है, वो अजर अमर नित्य है, इस चीज को समझो। ये आत्माएं 2 प्रकार की है, एक आत्मा है लाखों ये हम लोगों का, और उसमें एक परमात्मा है, वो परम है ना, श्रेष्ठ है, वो हमको मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, माता के घर में पालन किया, और उसके लिए हाथ जोड़ करके उसकी कृतज्ञता नहीं करेंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, इस चीज को समझो। एक पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया, बेटा उनका विरुद्धाचरण कर रहा है, कहता जी वो तो अपने सुख के लिए भोग किया, बच्चा मैं पागा हो गया, तो इसलिए उनका क्या मैं कृतज्ञ रहूँ। आजकल की ऐसी शिक्षा चल रही है, ऐसी बात नहीं, इसलिए समझिए इस चीज को। विशेष विशेष करके जो विद्वान हैं उनको ये सोचना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं मूर्खों की भांति कहाँ जा रहे हैं, किस लिए भगे जा रहे हैं, कुत्ता महाशय जी कहाँ जा रहे हैं और वहाँ से लौट रहे हैं बड़े बेग के साथ में, पूछो जी भाई कहाँ से आ रहे हो, उनका कोई प्लान नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है, जाते हैं मिल पत्थर के ऊपर में पेशाब करेंगे और वहाँ से लौट आएंगे बड़ी तेजी के साथ में, उनको बातचीत करने की फुर्सत नहीं। ऐसे हम सवेरे से शाम तक जो कार्य करते हैं कि इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझो। जन्म जन्मांतरों के कर्म के फलों से हम अभी मनुष्य जन्म भोग रहे हैं, इसमें यदि प्रभु का स्मरण नहीं किया तो फिर नरक में जाना पड़ेगा, इस चीज को समझो। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करें, जब पीछे भजन करेंगे अभी तो कमाए खाएं और उससे पहले मृत्यु हो गई तो कोई ठीक नहीं। जैसे दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई भी व्यक्ति, पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं, किंतु दुख तो अनिवार्य रूप में आता है। आप लाख चेष्टा करें बुढ़ापा आएगी कि नहीं, रोग आएगा कि नहीं, तो तुम्हारे कर्म में तुमने जो सुख के लिए काम किया है वो भी जरूर आएगा। तुम चेष्टा करो ये मत सुखाए तभी आएगा। जैसे बुढ़ापा किसी के लिए नहीं रुकेगी और तरह तरह के झंझट प्रॉब्लम ये रहेंगे। संसार में ऐसा कोई है जो भगवान का भजन नहीं करता? वो शांति से, उसके दिमाग चंचल नहीं है? इस चीज को समझने की चेष्टा करें और अपने लिए जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। एक बार अमेरिका में बहुत करोड़पति हैं, उनसे एक आदमी ने पूछा, हमारे अपने आदमियों ने, अच्छा ये आपको प्रतिदिन करोड़ों रुपए का जो मुनाफा हो रहा है, बड़े कंपनी के मालिक, अच्छा जब आप मर जाएंगे तो इनका क्या होगा? मैंने तो कभी चिंता ही नहीं किया कि इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, एक कौड़ी ले जाएंगे उसमें फूटी हुई तो, नहीं तो अपने बाप बेटों को बच्चों को ले जाएंगे, और तो नहीं तो ये पैसा जो कुछ संग्रह कर रहे हैं ये जाएगा, तो नहीं तो फिर किस लिए कर रहे हो इतना? तुम ये सोच रहे हो कि कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, किस लिए दुख आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कभी चिंतन करता है? और तो नहीं तो हम, अरे ये मैं तो सुन करके पागल हो जाऊँगा अभी, और सचमुच जो पागली जैसा हो गया। इन पर गंभीरता से, यही भारत की फिलॉसफी है, इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र। आंखों से देखना नहीं, बुद्धि के द्वारा विचार करके भविष्य देखो, ये हमारे दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं। कभी कभी हम सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपने आप आ जाता है, और कभी दुख को टालने के लिए लाखों चेष्टा करते हैं, दुख जाता नहीं, क्यों? पूर्व जन्म के कर्म हैं। अभी इस मनुष्य जन्म में भी आपने अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान का स्मरण नहीं किया, तो आपकी बड़ी दुर्गति हो गई, इसको समझ गांठ बांध रखिए। भगवान का भजन करना कठिन नहीं है, बड़ा दयालु है, यद्यपि हम उनको नहीं देख रहे हैं, वो हमको देखते हैं, करोड़ों लोगों को, वो परमात्मा है ना, हमारे पिता तुल्य हैं। तमेव माता च पिता तमेव 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 द्रविडम विद्या द्रविडम तमेव तमेव सर्वम। पिता से भी, माता से भी अत्यंत हितकर है, बंधु से भी हितकर है, इसलिए एक बार उनको पिता के रूप में स्मरण करो, बंधु के रूप में स्मरण करो, अपने प्रिय के रूप में स्मरण करो। तुम्हारा कुछ तो बिगड़ता तो है नहीं, पैसा तो वो चाहते नहीं, एक बार ये स्वीकार तो कर लो कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, बस इसी से प्रसन्न हो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और इतना भी नहीं करते तो जम के दूत आकर के आपको पीस डालेंगे, सब सुखी भांति, याद रखिए। जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिलेगी, ये गारंटी है, इसलिए सुख और शांति इस जन्म में भविष्य जन्म में चाहते हैं तो भगवान का जन्म कैसे स्मरण करेंगे? भगवान का नाम ऐसा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही भव माने समुद्र, आना जाना ये जन्म मरण ये सब सुख जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म, उल्टा नाम मरा मरा जपते हुए उनकी ये गति हो गई, फिर सीधा नाम और श्रद्धा पूर्वक करे तो क्या गति होगी, कहने की बात नहीं है। अरे ये अगस्त जी समुद्र को पान कर दिया भगवान का नाम ले, गणेश जी राम नाम ली करके तीन बार उसकी परिक्रमा कर दिए तो वो जगत में पूज्य बन गए, शंकर जी ये सृष्टि स्थिति इत्यादि जो करते हैं नाम के बल पर करते हैं, दुर्गा जी जो कुछ करती हैं भगवान के नाम के बल पर करती हैं, अपने नाम के बल पर नहीं, उनको शक्ति कहाँ से आती है? सूर्य को ये प्रकाश और हीट जो मिली है, गर्मी कहाँ से मिली है? गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवस्व सवितुर्वरेण्यम, सविता के सूर्य के भी वरेण्य हैं, उनको प्रकाश और ये सब देते हैं, जगत का उपकार करते हैं, इसलिए सबके आराध्य वही हैं। यदि कोई भगवान की आराधना ना करके इन लोगों की आराधना करे तभी छुटकारा नहीं होगा, कोई भी उपाय करो, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के जितने नाम का स्मरण करने के लिए तरीके हैं, उन सब में पहला तरीका है कलयुग केवल नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। समुद्र को लंघना हुआ, पार करना था, रामचंद्र जी को पुल बनाना पड़ा और उनके भक्त ने राम नाम किया और पार कर गए, हैं कूद गए ना, किसके बल पर? भगवान के नाम पर। राम नाम कह करके पुल जो बन रहा था,
राम नाम कह करके और उसको रख देते थे, पानी में नहीं डूबता था। रामचंद्र जी ने परीक्षा की, जैसे यदि हम पत्थर भी डालें तो ये डूबता है कि रहता है, जरा देखूं तो सबकी आंखों से ओझल होकर के झाड़ी में छिप करके एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, वो डूब गया, छिप शब्द हुआ डूब गया। हनुमान जी बोले, अरे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? प्रभु जी मैं आपके पीछे ही पीछे रहता हूँ, आप इतना कष्ट करके क्यों आए? तो मैं परीक्षा कर रहा था, ये तुम लोग तो राम नाम कह करके पत्थर रख देते हो, ये पुल पर पानी पर तैरता है, और मैं जरा देखूं तो मैंने उसमें फेंक दिया तो ये डूब गया। तो राम का पत्थर फेंका हुआ डूब गया, किंतु भगवान का नाम के लेकर के किया वो पानी पर तैरता रहा, क्यों? ये राम नाम की महिमा है, कृष्ण नाम की महिमा है। राम नाम कृष्ण की महिमा बोली,
माधव
हरि नाम है। वेदों का सार है, सारे वेद का, उपनिषद का, पुराणों का, ये सार नाम कृष्ण नाम और राम नाम है। ऐसे नहीं, भगवान के स्वरूप में जो जो शक्ति है इसमें उन्होंने प्रतिष्ठित कर दी है। राम ने, कृष्ण ने दो चार आदमियों को असुरों का ये किया, उद्धार किया, और राम नाम कृष्ण नाम आज से कोटि कोटि वर्षों से सतयुग से अभी तक करते आ रहे हैं, ये इनके नाम की महिमा है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, वेदों में भी कहा गया है, उपनिषदों में, ये जो कर रहे हैं ये उपनिषदों का मंत्र है। व्यास जी ने इसका वर्णन किया, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया पुराणों में, इतिहास में, इसलिए इसको आप जरा सुनिए। बढ़ता जा रहा है, नास्तिक लोग अधिक होते जा रहे हैं, न भजन साधन करेंगे वे, बीए भी पास नहीं करेंगे, ग्रेजुएट नहीं होंगे, न लॉ पढ़ेंगे, किंतु वे बहुत अच्छे वकील और जज बन जाना चाहते हैं, कुछ भी परिश्रम नहीं करना चाहते, केवल जज या कोई अच्छा वकील बनना चाहेंगे, ये कैसे संभव है? अरे ग्रेजुएट तो होना पड़ेगा, अति ऐसे ही लॉ पढ़ेंगे। उसी तरह से शास्त्रों के विचारों को, अपने पूर्वजों के विचारों को जो उन्नत है, जिसको विश्व में सबसे श्रेष्ठ विचार है, व्यास जी ने लाखों वर्ष तपस्या की, अगस्त्य जी ने की और सब ऋषियों महर्षियों ने की, उन्होंने अपना विचार हमारे शास्त्रों में भरा, उसको तो कभी जीवन में देखा नहीं। कहेंगे क्या जी, गिरिराज गोवर्धन पत्थर है, इसकी परिक्रमा करने से क्या है? उस पर चिड़िया और बंदर बीट करते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। रंगवेश्वर पर एक नास्तिक था, रंगवेश्वर पर अमरूद और मिठाई चढ़ाई गई और चूहा उनके मुंह सिर पर खड़े होकर के शंकर जी के और मिठाई खा रहा है। आदमी आए तो भाग गया और आदमी नहीं था तो वो उस पर चढ़ करके ऐसे ऐसे कर रहा और खा रहा। नास्तिक ने देखा जैसे ये शंकर जी को लोग पूजा करते हैं, पत्थर तो है, इसकी पूजा करने से क्या, यदि अपने एक मिठाई की रक्षा भी एक चूहे से नहीं कर सकता, उस पत्थर को पूजने से क्या हुआ? अरे पत्थर क्या है, कहें पत्थर पूजे
हैं,
कबीरा पूजे पहाड़, दयानंद पूजे पहाड़, पहाड़ कहते हैं, पत्थर कहते हैं। अरे जमुना इतने बाढ़ आ जाती है, आदमी कितने मर जाते हैं, तबाह कर देती है, वो जड़ नदी है, उसकी पूजा करने से क्या होगा? किंतु उन मूर्खों को ये पता नहीं, यदि शंकर जी के सिर पर एक चूहा चढ़ गया कुछ खा रहा, तो शंकर जी के तो सभी पुत्र है, यदि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सिर पर चढ़ करके कुछ जूठा गिरा दे और मैया की गोदी में टट्टी कर दे तो मैया क्या थप्पड़ देकर के उसे भगा देगी, न क्या करेगी? पूछो, पिता के सिर के ऊपर में छोटा सा बच्चा, उसको खिलाते खिलाते उसका पैर अपने सिर पर रख करके घोड़ा बन करके उसे ऐसे ऐसे दुला रहे हैं, कभी पिताजी का ये पकड़ लेता है, कभी मैया का स्तन पकड़ लेता है, कहता है ये तो महाकामी है, अपने छोटे से बच्चे को कहेगी मैया? ये मूर्ख लोग हैं, इनको कोई तत्व का ज्ञान नहीं। आज यदि मान ले कि ये गिरिराज जी पत्थर होते, जमुना जी केवल पानी की ही ढेर होती, व्यास जी जैसे लोग, सुखदेव जैसे लोग, सनक सनंदन सनातन ये सब लोग, यहाँ तक कि उमा पार्वती भी, ये शंकर जी की परिक्रमा के उद्यान स्वयं कृष्ण ने, कृष्ण को भगवान मत मानो, कोई हर्ज नहीं, महापुरुष तो मानना ही पड़ेगा, उन्होंने क्यों की? सब प्रकार की कामनाएं को पूर्ण करते हैं, याद रखो वो पत्थर नहीं है। ऐसी कोई चीज जगत में नहीं है जिसमें प्रभु नहीं है, अंतर ज्ञान में सर्वत्र प्रभु साधन से वो मिलते हैं। जैसे सर्वत्र आग है, जैसलाई जलाओ तो उसमें आग आएगी, आ नहीं जलाओ तो नहीं आएगी। उसी प्रकार से साधन से वो प्रकट होते हैं। लाखों लोगों का इच्छा पूर्ण नहीं करते कामना, तो आज लाखों लोग जो जा रहे हैं, बड़ी भीड़ होती है, जिसको मजिस्ट्रेट, नास्तिक से नास्तिक मजिस्ट्रेट और कोई भी हो, नहीं मायावती सरकार भी रोक सकती है लाखों लोगों को, क्यों है कुछ? इसलिए गिरिराज जी को केवल पर्वत की ढेरी मत देखो, पहाड़ों की। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा का जो अनुसंधान किया है वो बेकार का नहीं है, वैदिक भित्ति के ऊपर में ये सब प्रतिष्ठित हैं, बहुत दार्शनिक, बहुत गंभीर इसकी भित्ति है। अभी वल्लभाचार्य जी का नाम सुना होगा, रामानुज का नाम सुना होगा, मध्वाचार्य का नाम सुना होगा, शंकर जी का, शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं गोविंदम भजू, गोविंदम भजू, गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति दुःखकृति कर्णे। चाहे कानून जितना भी कोई जान ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, वेद शास्त्र भी पढ़ ले, किंतु भाई बिना भगवान नाम के कहीं भी गुजारा और सुख शांति नहीं होगी। हमने सुना है, अभी हम लोग बच्चे थे तो नाम सुना था वास्को डी गामा, विश्व का सबसे बड़ा पहलवान, रशिया के और अमेरिका के बड़े बड़े अपने से डेढ़ दुगनों को परास्त कर दिया। उसकी अंतिम गति भारतवर्ष में नहीं रह करके चला गया पाकिस्तान में, और लाहौर के अस्पताल में भर्ती हुआ, एक घूंट पानी नहीं पी सका और कोई उसको पूछा नहीं, ऐसे पानी के बिना मर गया। हाथ से अपने पानी नहीं पी सका। जवाहरलाल नेहरू को जानते, उनसे बड़ा कौन आदमी होगा, उनको पैरालिसिस हो गई, पानी नहीं पी सके। अरे तुम्हारी हमारी विषाद क्या है? इसलिए भगवान में विश्वास रखो, भगवान का नाम स्मरण करो, इसके अतिरिक्त और गोचर। गिरिराज जी को, जमुना जी का पत्थर और पानी मत देखो, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जरा गोवर्धन की परिक्रमा कराएंगे ना, कि कोई कुछ करिए जल्दी। वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भगवान के नाम की बड़ी कहानियां हैं, जिसमें वेद उपनिषद में जो सबसे श्रेष्ठ नाम बतलाया गया, ओम सत सत हरि, ओम हरि सत, ओम, इस ओम से गायत्री निकला, गायत्री से सारे वेद, वेदों से उनकी अर्थ को पूर्ण करने के लिए पुराणों का प्रकाश, वेदों का अर्थ, उपनिषदों का अर्थ समझाने के लिए ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की को प्रकट किया है। इसलिए समस्त नामों में मूल नाम जब देखा जाए तो ओम लगता है, किंतु ओम पानी का आधार जैसे समुद्र है, पानी का सबसे बड़ा आधार समुद्र है, किंतु एक पक्षी भी उसके पानी को पी करके जीवित नहीं रह सकता, नमकीन है ना पानी का आधार होने पर, किंतु उस पानी को वेपर के द्वारा सूर्य खींच लें समुद्र के नमकीन भाग को नीचे छोड़ करके वेपर के रूप में, और उसे बादल बनते हैं, क्लाउड बनती हैं, और वो फिर बरसे तो वो मीठा पानी हो, उसको हम पी सकते हैं ना। इस तरह से वेदों में जो सार ओम है वो खारा पानी का समुद्र भगवान के नाम का है। ओम कहेंगे तो किसको पुकारेंगे? ओम का कोई रूप नहीं दिखता, वो निर्विशेष, निरंजन, निर्गुण, अनादि, अव्यक्त है। वेदों का सार, अभी समय नहीं है तो अच्छी तरह से बतलाता, ये भगवान नाम राम और कृष्ण वेदों के सार नाम है। भगवान का जो नाम जगन्नाथ है, जगदीश नाम है, ब्रह्म नाम है, परमात्मा नाम है, ये गौण नाम है। गौण माने मुख्य नहीं, जगत संबंध में नारायण, राम, कृष्ण, ये मुख्य में भी मुख्य नाम है। जगदीश कहेंगे, जगन्नाथ कहेंगे, इसे उतने प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि जगत संबंधी नाम है। उसे आप यही ले सकते हैं, धन संपत्ति रुपया पैसा जगत के नाथ है ना, इसलिए जगत की चीज को देंगे, इसे ऊपर चीज नहीं दे सकेंगे। हमारे जीवन में आनंद को नहीं दे सकते। जगन्नाथ, जगदीश, ब्रह्मा, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, भगवान के नाम हैं, किंतु उनमें वो चीज नहीं है। जैसे पानी का सबसे बड़ा आधार समुद्र होने पर भी एक बूंद से उसके किसी की तृप्ति नहीं होगी, और वो परिष्कृत होकर के ऊपर में मेघ बन करके जब नीचे उतरेगा, उसे एक बूंद से भी लोगों की तृप्ति होगी। इसीलिए वेदों का मंथन कर नारायण, राम, कृष्ण इत्यादि नाम निकले। इसमें जगन्नाथ इत्यादि जो नाम करेंगे, हजारों बार लेंगे तो एक बार राम कहने का फल होगा। राम रामे थी रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम नाभिस्तुल्यम राम नाम बराने, ये उपनिषदों का मंत्र है। विष्णु सहस्र नाम, उनके सहस्र नाम है, उसमें जगदीश इत्यादि बहुत से नाम है, ये 1000 बार लेंगे तो राम नाम के बराबर होगा। इसी चीज याद रखिए, यद्यपि भगवान का नाम है। और एक बात, राम नाम को 3 बार उच्चारण कीजिए तो कृष्ण नाम 1 के बराबर होगा। 3 बार राम नाम करेंगे तो 1, क्यों? पक्षपात नहीं है, ये तत्व की दृष्टि से है। भगवान में, भगवान परिपूर्ण शक्तिमय है, इनमें सब प्रकार की शक्तियां हैं। आनंद के सागर हैं, रस के समुद्र हैं। इन रसों को जिसके द्वारा भगवान जीवों को आनंद देते हैं, ये 12 प्रकार के रस भगवान में हैं, इसलिए बतलाया गया ये रसो वैसह। विष्णु नाम इत्यादि में उसका सहस्त्र भाग का 1 भाग केवल इन नामों में फल है। राम नाम का ये उनमें 12 रसों में से केवल 2.5 रस राम के स्वरूप में, यद्यपि कृष्ण ही राम बने। कृष्ण राम में कोई भी अंतर नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा की कहने रक्षा करने के लिए एक सीता जी जो उनकी प्रिया जी हैं, जीवन भर उनका संग दिया, उनकी सेवा की, उनके साथ में बन गई, तो भी एक धोबी के कहने से उनको जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, ये कौन सा अन्याय है? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये उन पर दोष नहीं है। किंतु कृष्ण को लीजिए, मर्यादा से भी लात से मर्यादा को ठेल देंगे। प्रेम के लिए कृष्ण प्रेम के वशीभूत हैं। चाहे कुब्जा उनके पास आ जाए और उनसे भीख मांगे प्रेम की, तो कुब्जा को बड़ी सुंदर बना करके अपना प्रेम दे देंगे। रामचंद्र शूर्पणखा को प्रेम नहीं दे सकते, उसका शरीर बदल करके दूसरे जन्म में वो कुब्जा बनी, तो कृष्ण के रूप में आकर के उसको प्रेम दिया, भक्ति दिया, उस रूप में नहीं दिया, ना कन कटवा लिया। क्यों? दूसरे से शादी न कर ले, इस जन्म में दूसरी जन्म तक कुबड़ी बनी रही जब तक कि कृष्ण नहीं मिले। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। संसार से मर्यादाओं को पालन कराने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए ये सब करते हैं। और कृष्ण क्या है? भगवत्ता के सिरमौर है। कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हीं से सब अवतार निकलते हैं, सब देवता उनके, ये सब कोई दास है कोई दासी है, इसलिए वो प्रेम प्रधान है उनमें। प्रेम के आगे मर्यादा इत्यादि का कुछ भी नहीं देखते हैं, किंतु उसमें अपने आप मर्यादा आ जाती है। इसलिए कृष्ण नाम सर्वांग सुंदर और सबसे बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए राधा रमण, राधा गोविंद, राधा नाथ, गोपीजन वल्लभ, प्रेम के वशीभूत होने का ये सब नाम। यशोदा नंदन, नंद नंदन, ये सब ब्रज के नाम है। मथुरा से संबंधित नाम है, ये नाम सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए इन नामों का कीर्तन करना चाहिए। अभी आप तो राधा रमण हरि गोविंद इत्यादि ये जरा सुना रहे हैं, सुनिए और सब कीर्तन कीजिए।